आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के राजर्षि उदय प्रताप सिंह कॉलेज के 155वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, समय के प्रवाह के साथ खुद को करना होगा तैयार, शिक्षा में तकनीक का समावेश जरूरी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ से दुधवा के लिए हवाई सेवा का किया शुभारंभ। कहा, राज्य सरकार प्रमुख इको पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ा रही है एयर कनेक्टिविटी। संभल में स्थिति नियंत्रण में, स्थानीय सांसद समेत 800 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 25 लोग हिरासत में। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, 8 घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा को अवसर के रूप में लेना चाहिए, ताकि बदलते युग में हम देश को विकसित राष्ट्र बना सकें। श्री योगी ने आज वाराणसी के राजर्षि उदय प्रताप सिंह कॉलेज के 155वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति की उपेक्षा कर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि युवाओं और शिक्षण संस्थानों को समय के साथ खुद को तैयार करना होगा और बदलते परिवेश में शिक्षा में तकनीक का समावेश जरूरी है।
युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ा है, जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी, और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा।
इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रही है और हर जिले में विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। वहीं लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क में तराई की मिट्टी का उत्सव लखीमपुर महोत्सव की शुरुआत भी की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख इको पर्यटन क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी सेवाओं को मजबूत कर रही है। उन्होंने लखनऊ दुधवा हेलीकॉप्टर सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि पर्यटकों को यह सुविधा प्रति सैलानी महज 5,000 रुपए में मुहैया होगी और वो 45 मिनट में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पहुंच सकेंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि सैलानियों को यह सुविधा हफ्ते में 4 दिन मिलेगी। हिंसाग्रस्त संभल जिले में स्थिति नियंत्रण में है। शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद कल भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत के मामले में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 7 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और करीब 800 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। नामजद लोगों में स्थानीय सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि हिंसा के बाद तलाशी अभियान जारी है और पुलिस दोषियों की पहचान के लिए ड्रोन कैमरे के वीडियो खंगाल रही है। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। ये अभियान देशभर में कल से 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि इस सिलसिले में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस अभियान के क्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों से भाग लेने का आह्वान किया है। इधर प्रदेश में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज एक रैली निकाली गई। विधि विभाग की प्रमुख प्रोफेसर सुदर्शन वर्मा ने आकाशवाणी को बताया,
इस बार हम विश्वविद्यालय में 75वां संविधान दिवस सेलिब्रेट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज 25 नवंबर से ही कर दी गई है। एक मार्च पास्ट निकाला और इस मार्च पास्ट का उद्देश्य हमारे विश्वविद्यालय में जो टीचर्स हैं, जो छात्र हैं अन्य विभागों के, उनको संविधान दिवस के बारे में अवगत कराना और उनको ये जानकारी देना कि हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरह से मेहनत करके इतना अच्छा संविधान बनाया है।
केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जय सिंह ने बताया कि इस दौरान क्विज प्रतियोगिता और सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने हाल ही में अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। इस बारे में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया।
प्रसार भारती द्वारा अभी पिछले हफ्ते वेव्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया और हमारा ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक माध्यमों से जो भी हमारे दर्शक हैं देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में उनके पास पहुंच सकें और उसी के लिए जो भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके साथ में मिल करके हम इस दूरी को जल्दी पूरा करना चाहते हैं और आज इसी कड़ी में प्लेबॉक्स के साथ में हमारा ये फ्रीडम प्लान शुरू हुआ है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो फ्रीडम प्लान है उसका उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शक हमारे वेव्स प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे।
इस ओटीटी से लगभग 12 भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। इसमें सभी बोलियों में कार्यक्रम पेश किए जाने की भी योजना है। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के माध्यम से दूरदर्शन के अभिलेखागार वाले सभी कालजयी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आगामी जनवरी महीने में प्रयागराज में होने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ के लिए तैयारियां चरम पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में नगर आयुक्त चंद भूषण गर्ग ने आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी को बताया।
मॉनिटरिंग के पर्पस के लिए जितने हमारे कंट्रोल रूम के कैमरास हैं AI है, इसके अलावा हम लोगों ने शहर में 150 सुपरवाइजर्स और अभी हायर किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 50 डिप्लोमा होल्डर्स और स्किल्ड लोगों को भी हायर किया हुआ है ताकि रेगुलरली डिपार्टमेंट वाइज हमने पार्ट्स ब्रेक कर दिए हैं कि आपके सारे स्ट्रीट लाइटिंग जलती रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके शहर में सीवर या वाटर लीकेजेस की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, शहर के अंदर कहीं विजिबल वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स रेगुलरली क्लीनड अप होने चाहिए। तो सेगमेंट वाइज हमने टीम्स ब्रेक कर करके ये इंश्योर किया हुआ है कि
प्रदेश में दो अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हरदोई जिले के मल्लावा इलाके में गौरी चौराहे के पास आज सुबह एक कार और बस की आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। सभी कार सवार कानपुर में शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। वहीं पीलीभीत जिले में गजरौला में कोहरे की वजह से ट्रक और यात्री बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। पेंशनर के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है प्रत्येक वर्ष के नवंबर में स्वयं को जीवित प्रमाणित करना। इसके लिए कई कई बार बैंकों से लेकर कोषागार की दौड़ लगानी पड़ती है। इटावा में डाक विभाग ने इस समस्या के समाधान के लिए तकनीक को आधार बनाया है। डाकिया पेंशनर्स के घर पर पहुंचकर डिजिटल माध्यम से उनके जीवित होने का प्रमाण संबंधित बैंक और पेंशन प्रदाता संस्था को पहुंचाएंगे। इसके लिए पेंशनर को 70 रुपए का भुगतान करना होगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वेबसाइट से पेंशनर्स स्वयं ही अपना जीवित प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के राजर्षि उदय प्रताप सिंह कॉलेज के 155वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, समय के प्रवाह के साथ खुद को करना होगा तैयार, शिक्षा में तकनीक का समावेश जरूरी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ से दुधवा के लिए हवाई सेवा का किया शुभारंभ। कहा, राज्य सरकार प्रमुख इको पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ा रही है एयर कनेक्टिविटी। संभल में स्थिति नियंत्रण में स्थानीय सांसद समेत 800 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 25 लोग हिरासत में और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, 8 घायल। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।